It's remarkable how
इस संसार के देख कर हम इस जीवन के बारे में कितना सीखते हैं। उदाहरण के रूप में साइंटिस्ट पेड़ के रिंग्स को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम आगे कैसे होगा और हजारों वर्ष कैसे था इसके बारे में। हालांकि जब मौसम ठीक नहीं रहता, पेड़ धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं और हम और अपने ताकत वहां लगाते हैं जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब ठीक और अच्छा है, मगर इसे हवाई जहाज चलाने में क्या ताल्लुकात है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम हवाई जहाज में था और जब हलचल अनुभव किया? हलचल का समय वजह होता है हवा की मार्ग में अचानक बदलाव आता है, जैसे हवाई जहाज ऊपर नीचे विचलित और ढोलने लगता है। समय उड़ान में जो हलचल होता हमें उतना नहीं महसूस होता क्योंकि हवाई जहाज ऐसा बनाया गया है। तुम्हें क्या सोचते हैं विमान चालक करते होंगे जब हलचल समय होता होगा? एक विमान चालक शायद सोचते रफ्तार बढ़ाना अच्छा होगा क्योंकि वो उसे हलचल से जल्द निकलेगा, मगर वो करना शायद गलत है। अनुभव में विमान चालक जानते हैं कि आदर्श जिस पर उन्हें हलचल से गुजरना होता है हलचल के पूरे प्रभाव को कम करेगा, और ज़्यादातर उसका मतलब होता है कि रफ्तार कम करो। ये नियम रास्ते पर हम्स पर भी लागू होता है। इसलिए इस एक अच्छी सलाह है कि रफ्तार थोड़ा कम करो, मार्ग सीधा हो और ध्यान दो आवश्यकता बातों पर जब पूरा अनुभव कर रहे हो। ये एक सरल मगर नचिक स्वभाव है सीखने के लिए। शायद वो समझने लाए होता पेड़ों के हलचल की समझो के रखो। जब इन अनुभव को अपने जिंदगी में लगाओ, जब तनाव बढ़ते हैं, जब कठिनाई देखती हो, जब दुर्घटना होती है, अक्सर हम उसे रफ्तार पर रहते हैं और तेज सी जाने लगते हैं। किसी तरह से सोचते हैं कि जितनी तेजी से हम चलेंगे हम उतना बेहतर होंगे। जीवन का एक विशेष सकता है कि हमारी रफ्तार तेज होती है जा रही है, चाहे कोई हलचल या बदलाव हो रहा हो। हम ईमानदार हैं और हमें के वास्तव रहना सरल है। हम सभी कामों के बारे जान सकते हैं जो हमारे सूची को बढ़ा सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनको आत्मा मूल्य होगा कम करने वाले सोचे और लंबी में वो अपने सोच का खाली समय संभाव और छोटी कार्य भी, यहाँ तक कि तनाव और थकान के समय भी, क्योंकि वो बेकार अपने जीवन उलझल देती है। वो अक्सर ज्यादा हादसा महसूस करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी सद्गुण जब ज्यादा हो जाता है वो पाप बन जाता है। अपने आप को समय ना देना का भी ये अर्थ है। एक क्षण आता है हमारे जीवन में जब सफलता रुकावट बनने लगती है और मुसीबतों बन जाते हैं। बुद्धिमानों को पेक से रिंग के हवाई हलचल के सबक हो समझते और अब है वो दैनिक जीवन के भय दौड़ में भाग में फंसना नहीं चाहते। वो सलाह लेते हैं जीवन में रफ्तार बढ़ाने से जरूरी बहुत कुछ है। छोटे शब्दों में वो बातों पर ध्यान देते जो मृत्यु से डेलन चेनर ओक्स ने एक हाल सम्मेलन में सिखलाया, हमें कुछ अच्छी आदतों को त्यागना पड़ना है ताकि हम औरों को चुन सके बेहतर और उत्तम, और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को करते हैं और परिवारों को मजबूत करते हैं। उत्तम चीजों को ढूंढना जरूर हमें यीशु मसीह के समाचार के बुद्धिमान सिद्धांतों तक पहुंचाएगा। वो सरल और सुंदरता सच्चाई को हमको बदलाई जाती है और दयालु आनंद और कुछ जानने वाले स्वर्ग के पिता द्वारा। ये बुद्धिमान सिद्धांत भले ही बच्चे हो समझे के लिए आसान है, जीवन के सबसे पेचीली सवालों को जवाब देती है। सरलता में सुंदरता और स्पष्ट है जिसकी हम कभी कभी प्रशंसा नहीं करते सुझाव पाने के इच्छा में। उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट धरती का द्वारा करने के कुछ को बुद्धिमान लोग के समझ से सुझाव निकालने भेजे। उसमें हजारों घंटे और लाखों डॉलर लगाया, मगर अंत में उन्होंने एक कलम तैयार किया जिसके कहीं पर भी लिखा जा सकता है, किसी भी टेम्परेचर में और लगभग कोई भी वर्ष पर। मगर एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट क्या इस्तेमाल कर रहे जब तक समस्या के सुझाव ना मिला था, वह सिर्फ एक पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे।
Leonardo
di Vincenzo ने कहा था, सरलता सबसे उत्तम है। जब हम खुशहाली की योजना, उधार की योजना के बुद्धिमान सिद्धांतों को देखते हैं, हम जान पाते हैं और प्रशंसा होती है स्वर्ग के पिता के बुद्धिमानी की सदैव और सरलता और सुंदरता देखकर। फिर अपना जीवन उनके तरीके से जीना हमारे बुद्धिमानी का शुरुआत है। कहानी बदलाई जाती है कि परिषद अमेरिकन फुटबॉल का कोच विंस लिम्बार्डी परीक्षा के पिच पहली दिन का रीति कहता था, वो एक जेंड लाता, खिलाड़ियों को दिखाता कि जो कोई वर्षों से खेल रहे थे, और कहता, सज्जनों ये एक गेंद है। वो उसके अगर और रूप की बात करता और कैसे उसको लात मारा जाता, उठाया जाता या पकड़ा जाता। वो टीम को खाली मैदान में ले जाया जाता, ये एक फुटबॉल का मैदान है, उन्होंने उनके साथ मैदान पर चला जाता। इस कहकर ये कोच जानता था कि ये अनुभव खिलाड़ियां भी और सच में टीम बड़ाई खेल देखना सकेगा। वो अपना समय उजड़े हुए छलाकी की खेल को अभ्यास करते बीते सकते थे, मगर जब तक वो खेल को सिद्धियों पर निपुण ना जाते, वो कभी टीम नहीं बना सकते। मैं सोचता हूँ कि हम में भी कई लोग सहज से समझ है और बुद्धिमान क्या है। ऐसा होता है कि हम कभी कभी हम अमोहक चीज में ध्यान खो देते हैं, छपे हुए पर्दे, विभिन्न संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक औजार और मशीन, सभी लंबा अधिक सभी इस्तेमाल को पैदा देने वाले मनोरंजन या निर्दय तरीके लोगों से दूर करने के लिए। फिर भी इन सदकों आवाजों और चुनवाजों के बीच गलीली का वो बीमार पुरुष हमारे खड़ा है, इंतजार कर रहा है। उसने एक संदेश दिया है, आओ मेरे पीछे हो लो, और वो शक्तिशाली माइक्रोफोन से नहीं बोलता, मगर दबे हुए धीमी आवाज से कहता है। कितने आसान है बुद्धिमान से समाचार संदेश को कोने पर कब्रों के भामार में जो सभी ओर से आता है। पवित्र धर्मशास्त्र और जीवेश भस्वाओ ताओं के बोले गए शब्द सुसमाचार के बुद्धिमानी सिद्धांतों पर जोर डालती है। एक कारण हम एक बुद्धिमान सिद्धांतों के शुद्ध अधिक तक लौटते हैं कि वो घिरे अर्थ की सच्चाई का रास्ता है। वो प्रेरणा भरी अनुभव को दरवाजा हर एक वैसे ही हमारी समझ से बाहर है। ये सरल बुद्धिमान सिद्धांत परमेश्वर और मनुष्य के साथ वो स्वर्ग के खिड़कियों को खोलने की चाबी है। वो हमें शांति, खुशी और समझदारी की ओर ले जाएगा स्वर्ग पिता के अपने बच्चों के लिए। ये सरल प्रतिमान सिद्धांत के पिता ने अपने बच्चों के लिए वादा किया है जो उनकी सुनने के और करने के। भाई और बहनों, अच्छा होगा अगर हम अपने रफ्तार धीमी कर दें, अपने परिश्रमों को हिसाब की रफ्तार पर चलाते हैं, जरूरी विषय पर ध्यान दें, अपने आँखों उठाएं और वो देखें कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन बुद्धिमान आदेश पर ध्यान दें जो स्वर्ग पिता के अपने बच्चों के दिए हैं, जो एक मलदार और भरपूर जीवन बनाकर आनंद खुशियों पर वादा कह सकता है। वो हमें ये सब चीज विवेक और वास्तव के साथ करेगा सिखाने के, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति की अधिक तेज गति से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये आवश्यक है कि मनुष्य परिश्रम करें जिससे वो कि अपने परिश्रम का फल पाए। भाई और बहनों, परिश्रम के साथ अपने जरूरी कार्य को करने से हम दुनिया के उद्धार कर पहुंचेंगे। इसी कारण हम मसीह की चर्चा करते हैं, हम मसीह में आनंद होते हैं, हम लोगों की मसीह के विषय में उद्देश्य देते हैं, हम मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि हमारे संतान ये जाने कि वो अपने पापों की क्षमा कैसे पा सके। आतक जीवन में उलझों में ये सभी उत्तम तरीका है। जब हम अपने स्वर्ग पिता के और मृत्यु हैं और उनके ज्ञान पाना चाहते हैं, उनकी विश्वासों पर जो महत्वपूर्ण है, हम लगातार चार जरूरी रिश्तों की महत्व के से और अपने आप से, जब हम अपने जीवन के मूल्यांकन करने एक इच्छापूर्ण मन से, हम देखेंगे हम कितने दूर हैं गए हैं सबसे उत्तम तरीके के, हमारा समझ और साफ हो जाएगा और हम जान पाएंगे कि करने पाएंगे कि हृदय को शुद्ध करने और अपने जीवन को फिर मार्ग पर लाने के लिए। पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सबसे पवित्र और जरूरी है। हम उनके आत्मिक बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारी खुशहाली चाहता है। जब हम उन्हें ढूंढते हैं, जब हम उन्हें पुत्र यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, जब हम हृदय पवित्र आत्मा के प्रभाव के लिए खोलते हैं, हमारे जीवन और अटल और सुरक्षित हो जाता है। हम और ज्यादा शांति, खुशहाली और शांति अनुभव करते हैं जब हम पूरी कोशिश के साथ परमेश्वर के आनंद जीवन को जीते और उनके आज्ञाओं को पालन करते हैं। हम अपने स्वर के पिता के साथ के संबंध के सुधारते हैं, उनके बारे में सीखने ने, उसके बात करने और अपने पापों के प्रायश्चित करने से और फुर्ती से यीशु मसीह के पीछे होने से, क्योंकि बिना मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें उसके साथ कुछ अर्पित समय बिताना है। शांत के दैनिक व्यक्तिक प्रदान और धर्मशास्त्र अध्ययन पर ध्यान देना है। हमेशा एक चालू मंदिर रखने के साथ ये कुछ अकलमंद काम होगा कि जो हम अपने समय को कोशिश कर सकते हैं स्वर्ग पिता के करीब आने के लिए। हम भाजकर के निमंत्रण को सुने, शांत हो जाओ एंड जान लो कि मन ही परमेश्वर हूँ। हमारा दूसरा जरूरी रिश्ता है परिवारों के साथ है। जब से के सफलता यहाँ पर असफल हजारों नहीं है। हमें अपने परिवारों में ऊंची दर्जा देना है, हमें गिरे प्यार सरलता देना है, जैसे पवित्र भोजन और साथ में मनोरंजन करना। परिवार में प्यार मजबूत होता है जब हम ज्यादा समय बिता सकते हैं। एक दूसरे के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। घर और हम एक दूसरे के बात करते हैं, ना कि दूसरे के बारे में। एक दूसरे से सीखते हैं और अपने बुद्धिमान और समझ पाते हैं। हमें ध्यान बातें जोड़ लेते हैं एक दूसरे के। जब परमेश्वर के पास जाते हैं और परिवार प्रार्थना सुसमाचार अध्ययन और साथ करते हैं, रविवार में प्रार्थना करते हैं। हमारा तीसरा जरूरी रिश्ता हमारे भाई बंधुओं के साथ है। इसी रिश्ते को हम एक व्यक्ति के समय द्वारा बनाते हैं। औरों के जरूरतों के बारे में जाने और उनके सेवा करने में और अपने समय और गुणों में। एक बहन ने मैंने बहुत प्रभावित किया जब उसने माँ बनने वाली थी और बीमार थी और जाना कि उन्होंने क्या किया। और हम हाफते हुए लोगों को ढूंढते जो मुसीबत में और निराश देखते हैं और अपने वक्त निकाला और उनको सुने। वो कितने सारे लोगों के जीवन में कितने अच्छा आशीर्वाद थी। हमारा चौथा जरूरी रिश्ता अपने आप से है। अजीब लगेगा, ये सच है कि हम खुद के साथ रिश्ता कर सकते हैं, मगर ऐसा ही है। कुछ लोग अपने आप के साथ मुजूल कर सकते हैं। वो अपने आप की निंदा किया करते हैं और अपने आप को छोटा समझ रहते हैं। मेरा सुझाव है कि वास्तव में काम करो और थोड़ा ज्यादा समय निकालो अपने आप को बेहतर जानने के लिए। परमेश्वर की रचना को आनंद लो और वो तुम्हारे लिए क्या है और वो क्या बना अर्थ है। सीखो अपने आप को स्वर्ग पिता की नजर देखो, उनके अनमोल पुत्र और पुत्री जैसा क्या है। भाइयों बहनों, हम होशियार रहे। हम यीशु मसीह के पुनर्स्थापित समाचार के पवित्र सिद्धांत के पानी की हम उसका भोज करें और उनके सुझाव को पाएं। स्वर्ग का द्वार फिर से खुल जाएगा। यीशु मसीह का सुसमाचार फिर से धरती पर आ गया है और उसके सहज सच्चाई हमारे खुशी का स्रोत है। भाइयों बहनों, हमारे पास जरूर भराई वजह है कि हम करें। अगर जीवन और उसकी रफ्तार कई तनाव जाने करने कठिन और शायद ये अच्छा समय है कि ध्यान दो कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय शक्ति हाल भली मेरे कार्य कर है मगर संचल है। वही मिलता है आनंद ध्यान और कोशिश की यीशु मसीह के पुनर्स्थापित समाचार की पर। वो मिलता है दिव्य बातों पर ध्यान देने से जो ज्यादा जरूरी है। हम अपने जीवन को थोड़ा सहज बनाएं, हम कुछ बदलाव लाएं अपने जीवन को सहज की सुधारण करने में। एक मार्ग जो हमेशा अंधपूर्ण प्रसन्नता और शांति के जीवन रच जाता है। इसकी में प्रार्थना कर होंगे। आशीर्वाद छोड़ हूँ आपके साथ इस मसीह के अपने आशीष के साथ इस मसीह के नाम से, आमीन।